Namo Buddhaya. Good morning to everybody. Second good morning to everybody. I hope you're all rested and fresh.
आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से आराम मिला हो और आप तरोताजा हो.
And yes, it's strange that snake. I dreamt about exactly that snake two nights ago.
और थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन यही जो सांप है इसका मैंने दो दिन पहले सपना देखा था.
Very strange.
बहुत अजीब है.
There you are. Shows that, huh? Yeah. But it was exactly that one, the same markings.
तो बिल्कुल ऐसे ही उसके ऊपर निशान थे.
Anyway, we're looking at the conditions for excellence.
तो हम जो है उत्कृष्टता निर्माण करने वाली परिस्थितियों की ओर देख रहे हैं.
We've seen that everything arises in dependence on conditions.
हमने देखा कि जो भी निर्माण होता है वो परिस्थितियों पर आधारित होता है.
And we're looking for the conditions that create excellence.
और हम ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं जो उत्कृष्टता निर्माण करती है.
We've seen there are different kinds of conditionality.
हमने देखा कि अलग अलग तरह के संस्कार हैं.
And we've been particularly looking at karma. नियम conditionality.
और खास करके कर्म नियम का जो संस्कार है उसकी तरफ हम देख रहे हैं.
Because that is in the first place what we're working with to develop ourselves.
क्योंकि सबसे पहले इसी नियम के साथ हम शुरुआत करके अच्छाई निर्माण करने वाले हैं.
I'll get on to Dhamma Niyama later.
और उसके बाद मैं धम्म नियम के बारे में बात करूंगा.
So we've seen that working with Kamma Niyama means developing the skillful mental states out of which the mind develops.
तो हमने देखा कि कर्म नियम जो है वो ऐसा है कि कुशल मनोस्थाओं के साथ काम करना
from which the development takes place.
और वहाँ से जो है हमारा विकास शुरू होता है.
The karma, the skillful karma, is like the seed.
तो कुशल कर्म जो है एक बीज की तरह होते हैं.
And the resulting mental state is like the fruit.
और उसमें से जो मनोस्थाव ये निर्माण होती है वो एक फल की तरह होती है.
So your experience is constantly being recreated.
तो आपके अनुभव जो है निरंतर नए नए आकार लेते रहते हैं.
Your consciousness is constantly being recreated.
और आपकी जागृति जो है वो भी पुनर्निर्मित होती रहती है.
And if you act skillfully, it's recreated in a more expansive, more satisfying, more true way.
और अगर आप कुशल कर्म कर रहे हैं तो आपका विकास होता है, बढ़ोतरी होती है और बहुत ही समाधान कारक ऐसे तरीके से होती है.
That's what we've been looking at.
और इसी की तरफ हम देख रहे हैं.
And we've seen that one of the primary ways of working with developing skillful karma is the precepts.
और हमने देखा कि कर्म के साथ कार्य करने का सबसे ही शुरुआत का तरीका जो है वो अपने शीलों के साथ कार्य करना.
The list of the five precepts, and there are other lists as well, that shows us what skillful action is.
तो पांच शीलों की हमारे पास सूची है और भी कई सूचियां हैं जिसमें से हमें पता चलता है कि क्या कुशल है.
And we can use that as a sort of guideline for our own action.
और हमारी कृतियों के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पे हम उन्हें देख सकते हैं.
And we'll see the results.
और हम उसके परिणाम भी देखेंगे.
So we can think regularly about the precepts.
तो हम शीलों के बारे में नियमित तौर से सोच सकते हैं.
Reflect on our own actions in the light of those precepts.
और इन शीलों के प्रकाश में हमारी रोज की कृतियों पे हम चिंतन कर सकते हैं.
Think deeply about our own lives in the light of those precepts.
और इन शीलों को लेकर हमारे जीवन के बारे में भी बहुत गहराई तक हम सोच सकते हैं.
And very very good of course to talk with friends about one's practice.
और हमारे आचरण जो है उसके बारे में अपने मित्रों से चर्चा करना भी बहुत अच्छा होता है.
This is in Buddhism the main basis of Sangha.
और बौद्ध धर्म में यही संघ का मूलभूत आधार होता है.
Our friendships with each other are based on the precepts.
तो हमारी एक दूसरे से जो मित्रता है वो शीलों पर आधारित है.
And our discussion with each other is especially in the first place about the precepts.
और हमारी जो एक दूसरे से चर्चा है वो भी देखा जाए तो शीलों के बारे में ही है.
Especially admitting, confessing any failing.
तो अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम उसकी पाप देशना करते हैं, उस गलती को स्वीकार करते हैं।
You know that some of us are members of the Triratna Bauda Sangha.
तो आपको मालूम है हम में से कुछ लोग त्रिरत्न बौद्ध संघ के सदस्य हैं।
And others are preparing for to join the order.
और अन्य कुछ लोग हैं जो संघ को शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं।
Sam is off to Spain for a month, for 4 months, where he will probably be ordained if he behaves himself.
तो सैम जो है स्पेन में 4 महीने का एक शिविर करने वाले हैं, और अगर वहाँ उन्होंने अच्छा बर्ताव किया तो उनकी दीक्षा भी हो जाएगी।
I still got a little bit of power.
तो मेरे हाथ में अभी भी थोड़ा बहुत पावर है।
And you've got to use every bit of power you have. No, that's not Buddhist. Sorry.
और आपके पास जो भी शक्ति होती है आपने उसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये बौद्ध आचरण नहीं है।
Yes, so in our order, we meet in coolers every week.
तो हमारे संघ में हम हर हफ्ते कूलों में मुलाकात करते हैं।
And one of the primary purposes of those meetings is to confess any breaches of the precepts.
और इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमसे जो भी गलत हुआ है उसको हम उस गलती को स्वीकार करें।
So that we can bring ourselves back into line with our ideals.
ताकि हम वापस एक बार अपने आदर्शों के साथ अपना जीवन जीना शुरू करें।
And I think it's a very important function of friendship.
और ये मित्रता का बहुत ही महत्व का ऐसा कार्य है।
You know, when you were young, well, some of you are still quite young. When you were young, you have very strong sense of ideals.
तो जब आप युवा होते हैं, अभी भी आप में से बहुत लोग युवा हैं, आपके अंदर आदर्शों के प्रति एक अजीब सा लगाव होता है।
But the pressures of life, as time goes by, make it difficult to keep to those ideals.
लेकिन जैसे-जैसे वक्त आगे जाता है, तो वक्त का इतना दबाव आपके ऊपर होता है कि इन आदर्शों के साथ जीना मुश्किल लगने लगता है।
I was just talking with Sam over breakfast about some of his friends from university.
तो नाश्ता करते वक्त सैम से उसके विद्यालय के दोस्तों के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी।
He's just finished his post-graduation in Britain.
तो अभी-अभी ब्रिटेन में उन्होंने अपने स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है।
He's talking about been in correspondence with his friends who've left university like him just this summer, last summer.
तो अभी पिछले ग्रीष्म ऋतु में ही उनके जो मित्र उनसे अलग हुए हैं, उनसे उनका संपर्क बना रहता है।
And they're all facing the question of how to go on without compromising.
और उन सभी के सामने एक सवाल है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किए बिना आगे कैसे जाए।
And that the life constantly invites you to forget your ideals and survive.
और जीवन में निरंतर ऐसी परिस्थितियां सामने आती है कि जो आपको आह्वान देती है कि अपने आदर्शों को भूलो और आगे बढ़ो।
You know, come on, be realistic.
वो कहते हैं कि वास्तविकता को देखो।
It's very good. These ideals are very, very good. You know, on paper.
तो कहते हैं कि कागजों पे ये आदर्श बहुत खूबसूरत लगते हैं।
But you've got to live.
लेकिन आपको जीना है।
Relax, don't worry.
इसलिए शांत रहो, चिंता मत करो।
Just, you know, you one day maybe in heaven you can practice those ideas.
और एक दिन शायद स्वर्ग में आप अपने आदर्शों के अनुसार आचरण कर सकते हैं।
That really is what effectively happens.
और यही है जो आमतौर पे होता है।
I remember that talking to lecturers at university as I was coming to complete the degree.
तो जब मैं अपना पदवी पूरी कर रहा था, तो मेरे जो प्राध्यापक है उनसे कुछ चर्चा मुझे याद
है। I'd studied philosophy. These were philosophy lecturers.
तो मैंने जो कुछ पढ़ा था वो तत्वज्ञान के ऊपर पढ़ाई की।
And they were more or less saying, look, it doesn't matter what philosophy you have. The main thing is that you have a good degree and you can get a job.
तो उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि क्या तत्वज्ञान आप पढ़ रहे थे। उन्हें लगता था कि एक अच्छी डिग्री आपके पास हो और अच्छी नौकरी आपको मिले।
But yes, we need to keep to our ideals.
लेकिन हमें हमारे आदर्शों को साथ रखना चाहिए।
Otherwise, well, you feel a deep sense of dissatisfaction with yourself.
लेकिन ऐसा नहीं है तो बहुत गहरा असंतोष आप अपने अंदर महसूस करते हो।
So thinking about the precepts, talking about the precepts, confessing helps you to keep to your ideals.
तो शीलों के बारे में बातचीत करना, चर्चा करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, इसकी वजह से आप अपने आदर्शों के साथ जुड़े रह सकते हो।
So that's our primary practice in Buddha Dhamma.
और बौद्ध धर्म में ये हमारा एकदम शुरुआती आचरण है।
The path begins with Shila.
और ये रास्ता जो है शीलों के साथ शुरू होता है।
Because this provides the basis of skillful activity.
क्योंकि कुशल कर्मों के लिए ये हमें आधार देते हैं.
Out of which a better and better mind emerges.
और जिसमें से एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऐसा मन विकसित होता है.
But of course, there's much else that we can do.
लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं.
And our teacher talks about different ways of working to develop a skillful mind.
और हमारे गुरु जो हैं एक कुशल मन को विकसित करने के लिए और भी कई तरीके बताते हैं.
He distinguishes between indirect and direct methods of working on developing a skillful mind.
तो वो कहते हैं कि कुशल और कुशल मन को निर्मित करने के लिए सीधे और थोड़े से इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष ऐसे तरीके होते हैं. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष.
With meditation, we're working directly on our minds.
तो जब हम ध्यान करते हैं तो प्रत्यक्ष हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं.
But there are many things we can do that indirectly help to create skillful mental states.
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी हम कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे कुशल मन निर्मित होता है.
Well, the first one is you can come on retreat.
तो पहली बात है कि आप शिविर में आ सकते हो.
Come to Bhaja.
Bhaja आ सकते हो.
And I imagine that for many of you just arriving here. Already put you in a better state.
और मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ कि आप में से जो लोग यहाँ पे आए हैं, अभी से आपने अपने आप को एक कुशल मनोस्था में ला लिया है.
Just to be away from all the hassle.
तो बाहर की जो गड़बड़ी है उससे आप दूर हो.
What's hassle?
गड़बड़.
गड़बड़.
घाई गड़बड़.
घाई. Ah, yeah, nice. Away from all of that.
तो उन सब से दूर हो.
In the midst of nature.
और निसर्ग के बीच में हो.
Those caves nearby.
और पास में ही गुफाएं हैं.
You already feel very uplifted.
और बहुत ही ऊंचा आप महसूस करते हो.
And yes, being with friends who share your ideals.
और ऐसे मित्रों के साथ हो जो आपके ही आदर्शों के अनुसार आचरण कर रहे हैं.
You know that everybody here is here because they are interested at the very least in improving themselves.
और आप जानते हो कि हर कोई जो यहाँ पे उपस्थित है वो इसलिए है कि वो अपने आप को और बेहतर बनाना चाहता है.
It'd be a bit strange to come on an excellence retreat if you wanted to get worse.
तो ये बहुत ही अजीब होगा कि आप एक उत्कृष्टता के शिविर में आ रहे हो, आप बुरा बनना चाहते हो.
That's why I think it's such a good title.
तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये शीर्षक है.
Because you can be sure that everybody who comes has that sense of some ideal.
क्योंकि आप को इस बात का एक तसल्ली होती है कि हर कोई जो यहाँ पे आ रहा है तो उनके वो आदर्श हैं.
So already just to be with people who share that perspective is uplifting.
तो सिर्फ उन लोगों के साथ होना कि जो इस दृष्टिकोण को आपके साथ जीते हैं उससे भी आप ऊंचाई महसूस करते हैं.
And I'm sure you found already that friendships are developing if they're not there already.
और आपने देखा होगा कि आप में मित्रता बढ़ने लगी होगी.
And you can talk with each other in a new way.
और आप बिल्कुल नए तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत कर पा रहे होंगे.
I remember that very strongly from my own first retreat.
तो मेरा जो पहला शिविर है उसमें से मुझे ऐसी ही बातें याद आ रही.
It was 42 years ago.
और इसको 42 साल हो चुके हैं.
It's hard to believe it was 42 years ago.
तो यकीन नहीं आता है कि 42 साल हो गए.
And some of the friends I made on that retreat are still my closest friends.
और उस शिविर में मैं अपने कुछ मित्रों से मिला था, वो आज भी मेरे करीबी मित्र हैं.
There seemed to me a different quality to the friendship.
और मुझे लगता है कि इसमें मैत्री को एक अलग सा गुण है.
Because it was friendship in ideal.
क्योंकि ये आदर्शों के साथ की गई मैत्री थी.
So, and that can be a very, very strong support to skillful mental states.
और फिर कुशल मनोवस्थाओं के लिए आपको बहुत ही मजबूत ऐसा वहां से आधार मिलता है.
Well, we've been doing qigong, karate, yoga.
हम चिकुंग कर रहे हैं, कराटे और योगा कर रहे हैं.
These are indirect techniques for lifting your mind.
तो अपने मन को ऊंचाई पर ले जाने के अप्रत्यक्ष तरीके हैं.
I don't know what you felt so far.
तो मुझे नहीं पता आपको अभी तक क्या महसूस हुआ है.
Maybe you didn't feel in a positive mental state when Subhuti was making you hold your arms up.
तो जब सुबुति आपको अपने हाथ ऊपर करने के लिए लगा रहे थे, शायद आपकी मनोवस्था कुशल नहीं रही होगी.
I hope you didn't have too bad thoughts about me.
तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में बुरे ख्याल आपके मन में नहीं आए होंगे.
But you probably find that just through doing that very calming, very peaceful, very mindful activity that yes, you're in a different mental state.
तो सिर्फ ऐसा करने से भी आपको लगता है कि बहुत शांत समाधानी ऐसी और एकात्मता वाली जो भावना है वो आपके अंदर जागती है।
I certainly remember when I used to do karate that after doing a session of karate I'd feel so good.
तो मुझे याद है कि जब मैं कराटे करता था और कराटे का सत्र खत्म होने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था।
Just so much energy and so much free energy.
तो बहुत सारी ऊर्जा होती थी और मुक्त ऐसी ऊर्जा का संचार होता था।
And of course the same for, where's Prasadik? The same for yoga.
और वैसा ही योगा के बारे में भी है।
I have to keep Prasadik happy.
तो मुझे प्रसादिक को खुश रखना है।
Yeah, yoga too.
तो योगा से भी ऐसा होता है।
So yeah, those are indirect techniques for developing skillful mental states.
तो कुशल मनोस्थावे निर्माण करने के ही अप्रत्यक्ष तरीके हैं।
I think that art is a very important indirect technique.
और कला भी ऐसा ही एक अप्रत्यक्ष माध्यम है।
I think art actually in its higher reaches is a direct technique.
तो कला जो है अपने सर्वोत्तम स्तर पे जो है ऐसी ही एक तकनीक है।
If you really engage very seriously in poetry or in painting or sculpture or whatever, it comes very very close to the practice of the Dhamma.
तो अगर आप बहुत गहराई से इन कलाओं में जैसे कविता लिखना है मूर्ति बनाना है इस तरह की कलाओं में अपने आप को देते हो तो आप धम्म के आचरण के अपने आप को बहुत करीब लेकर जाते हो।
And certainly in Buddhist history, art has been very, very important.
और बौद्ध इतिहास में भी कला को बहुत महत्व दिया गया है।
Some of the greatest of ancient Indian art is Buddhist.
तो बहुत ही पुराना ऐसा जो भारतीय कला है वो बौद्ध कला है।
I went to the British Museum recently.
तो मैं ब्रिटिश के संग्रहालय में अभी हाल ही में गया था।
And you know that the British in their colonial enterprise got lots and lots of art from all over the world.
और जब ब्रिटिश अलग-अलग देशों में कॉलोनी बना के राज किया करते थे तो वहां की बहुत सारी कला की वस्तुएं वो लेकर आए।
They're just slowly beginning to give some bits back.
और अभी थोड़ा थोड़ा करके वो उनको वापस भी कर रहे हैं।
You notice I say they.
तो आपने देखा होगा कि मैं वो कह रहा हूँ।
I don't identify with my country in that respect.
तो उस संदर्भ में मैं अपने आप को अपने देश के साथ नहीं जोड़ता।
But that museum is a really wonderful museum. It's got some of the finest pieces from all over the world.
तो वो संग्रहालय जो बहुत ही अच्छा संग्रहालय है और विश्व की बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां वहाँ हैं।
And they had some small bas relief, what do you call it, carved plaques from Gandhara.
तो गंधार का जो कोरीव काम मनता है ना शिलालेख ऐसा वहाँ पे कुछ है।
Which is of course now in Pakistan, Afghanistan. Yeah.
तो गंधार जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं है।
But it's part of Indian culture at that time.
लेकिन उस वक्त ये भारतीय संस्कृति का एक भाग था।
They were absolutely exquisite.
और बहुत ही अद्वितीय ऐसी वो चीज थी।
There was one particularly of the Buddha leaving home.
और उसमें से एक ऐसा था कि जिसमें दर्शाया गया था कि बुद्ध घर को छोड़कर जा रहे हैं।
You remember in the story the dancing girls were all sleeping around him.
और आपको कहानी से याद होगा कि वो जो उनकी नृत्यांगनाएं थी वो आजू बाजू सो रही थी।
And the way they were sculpted was just so beautiful and so expressive.
और जिस तरीके से उनको वहां पे कोरा गया था मराठी में कोरले लो तो बहुत ही वो सुंदर था।
So in that kind of art you can express very intensely positive mental states.
तो ऐसी कलाओं में बहुत ही आपकी कुशल मनोस्थाएं दिखती हैं।
I must say that this Buddha Rupa to me is one of the better ones that we have.
तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो बुद्ध रूप हमारे पास है तो आमतौर पे जो हमारे पास होते हैं उससे अच्छा है।
There's a real sense of the serenity of the Buddha in the figure, in the face.
तो एक बुद्ध की जो शांतता या शुद्धता होती है वो इसमें दिखती है।
The sculptor wasn't a Buddhist, but he must have had some feeling for what Buddhahood meant.
तो ये मूर्तिकार जो है वो बौद्ध नहीं था लेकिन उसके अंदर शायद कुछ भावनाएं होगी कि ये क्या होता है।
So the creation of art and the appreciation of art are very important indirect techniques.
तो कला की निर्मिति करना या कला की प्रशंसा करना ये भी अप्रत्यक्ष तरीके हैं।
And if you can feed your mind on the best of art, that will help you to develop skillful mental states.
और इस तरीके की बेहतर कलाकृतियां अगर आप अपने आप को दे सकते हो तो आपको कुशल अवस्थाओं की तरफ जाने में मदद होती है.
We've got a designer here.
तो हमारे पास एक डिजाइनर भी है.
And good design is uplifting.
और एक अच्छी जो डिजाइन होती है वो आपको ऊंचा उठाती है.
You know, if we have an excellent website, it should have excellent design.
तो अगर आपने पास एक उत्कृष्ट वेबसाइट होनी चाहिए तो उसका डिजाइन भी बहुत सुंदर होना चाहिए.
Well, there's a famous saying, the medium is the message.
तो ऐसा कहा जाता है कि माध्यम है वही संदेश होता है.
So that if the message is given in a beautiful form, well, that makes it much more appealing.
तो अगर एक संदेश बहुत ही सुंदर तरीके से दिया जाता है तो बहुत अच्छी भावना निर्माण होती
है. But in a way, even the form is the message.
लेकिन जो स्वरूप है वो खुद भी संदेश होता है.
Yeah, I'm sorry about this medium. Not very beautiful, I know.
तो ये जो माध्यम है बहुत सुंदर नहीं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ.
But I do my best.
लेकिन मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास कर रहा हूँ.
So yes, the art culture in general can be a really strong support of positive mental states.
तो कला संस्कृति ये जो है कुशल मनोस्था के बहुत ही अच्छे समर्थक होते हैं.
Tonight we'll do a ceremony, a puja, which will, I hope, be appealing to you.
तो आज रात हम एक पूजा करने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये सही में आपको कहीं छू लेगी.
We use a Hindi translation of a 7th century Sanskrit original.
तो सातवीं शताब्दी की एक संस्कृत पूजा है, उसका हम हिंदी अनुवाद यूज करने वाले हैं.
It's very, very beautiful language.
और बहुत ही वो सुंदर ऐसी भाषा है.
So all of that helps to create an uplifted mind.
तो वो सब जो है एक उच्चतम मन को निर्माण करने के लिए मदद करती है.
So if you're trying to develop skillful karma, use these indirect techniques.
तो अगर आप कुशल कर्म निर्माण करना चाहते हैं तो ये सब अप्रत्यक्ष तरीके आप इस्तेमाल कीजिए.
Especially friendship is a very, very important support of skillful mental states.
और खासकर मैत्री जो है कुशल अवस्थाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित.
In fact, famously, on one occasion, the Buddha said that Kalyana Mitrata is the whole of the spiritual life.
और आपको याद होगा कि एक प्रसंग में बुद्ध ने ऐसा कहा था कि कल्याण मित्रता ही पूरा आध्यात्मिक जीवन है.
Kalyana Mitrata is the term for friendship which is based in the Dhamma.
तो कल्याण मित्रता एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि धम्म पे आधारित मैत्री.
Well, you know what Kalyan means.
आपको पता है कि कल्याण मतलब
क्या? Although unfortunately it's a bit like Adarshnagar, we have Kalyan and Nirthane, which is far from Kalyan.
तो दुर्दैव से जैसे अपना आदर्श नगर था वैसे ही ठाणे के पास अपना कल्याण भी है.
I'm very glad we haven't got a city called Dhamma.
तो मुझे बहुत खुशी होती है कि धम्म नाम का ऐसा कोई शहर नहीं है.
Or a town called Buddhanagar.
या बुद्ध नगर नाम का कोई
शहर. It'd be bound to be the most ugly place in India. Yeah.
और वो शायद भारत का सबसे बदसूरत जगह होगी.
Yeah, so don't think of Kalyan near Thane when you think of the Kalyana Mitrata.
तो कल्याण मित्रता के बारे में आप सोच रहे हैं जब, तो ठाणे के पास का जो कल्याण है उसके बारे में मत सोचिए.
I hope I haven't offended anybody. Yeah.
तो मुझे लगता है कि मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई हूँ.
He lives near Thane.
तो वो ठाणे के पास रहते हैं.
Very nice city. People from Kalyan are very nice people.
तो बहुत अच्छा शहर है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं.
But it's not the most beautiful of cities.
लेकिन बहुत सुंदर ऐसा वो शहर नहीं है.
Anyway, Kalyan means beautiful.
तो कल्याण का अर्थ होता है सुंदर.
And Kalyana Mitrata is a friendship in beauty.
और कल्याण मित्रता जो है कि सुंदरता में मैत्री.
Kalyan in Kalyana in Sanskrit and in Pali means beautiful, yes.
और संस्कृत और पाली में कल्याण मतलब सुंदर होता है.
But it also means good.
लेकिन इसका अर्थ अच्छा भी होता है.
Ethically good, ethically pure.
और नैतिकता में सुंदर, शुद्ध.
And it has a connotation of spiritually elevated.
और इसका एक भाग ये भी है कि आध्यात्मिक ऊंचाई मिला हुआ.
So Kalyana Mitrata is a friendship which has ideals at its base.
तो कल्याण मित्रता मतलब ऐसी मैत्री जिसके आधार में जो है वो नैतिकता है.
You know, a lot of friendship is well, it's very positive.
तो बहुत सारी जो मैत्री है बहुत सकारात्मक होती है.
But there's not much of ideal in it.
लेकिन उनमें कुछ आदर्श नहीं होते.
And sometimes that friendship doesn't withstand the stresses and strains of life.
और फिर जीवन के जो कुछ दबाव तनाव रहते हैं उसमें वो मैत्री जी नहीं पाती.
But if we are trying to live by ideals, it's important that we have friends who are living by those same ideals.
लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारे कुछ आदर्श हैं, तो ये भी जरूरी है कि ऐसे दोस्त होना जो वो आदर्शों का आचरण करते हैं.
Then when you come together, you tend to strengthen those ideals.
और फिर जब आप इकट्ठा आते हो, तो इन आदर्शों को आप मजबूती देते हो.
You know what unites quite a lot of friendships?
आप जानते हो कि कौन सी चीजें मैत्री को मजबूत करती हैं?
Gossip.
चुगली करना.
चुगली.
हाँ.
चुगली. Yeah, चुगली. That's the right word. चुगली. That's what often brings people together.
तो उससे कई बार लोग जो है इकट्ठा आते हैं.
Talking about them.
उनके बारे में बात करना.
Well, that's not kalyanamitrata.
तो ये कल्याण मित्रता नहीं है.
You could say that kalyanamitrata, if you're talking about faults, you're talking about your own faults.
तो कल्याण मित्रता में अगर आप गलतियों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप खुद की गलतियों के बारे में बात कर रहे हो.
And you're helping each other to become more excellent.
और अपने आप को और उत्कृष्ट करने के लिए आप एक दूसरे को मदद कर रहे हैं.
I think actually a very kalyana would be a very good translation of excellence.
तो मुझे लगता है कि उत्कृष्टता का सही अनुवाद मतलब कल्याण ही होगा.
It does in the Buddhist context have also the connotation of friendship with somebody who has a greater experience of the kalyana.
तो बौद्ध धर्म में एक दृष्टिकोण ये भी है कि कल्याण मित्रता मतलब ऐसी मित्रता कि जिसमें एक व्यक्ति
greater experience of it, yeah.
उसे इस कल्याणता का या सुंदरता का ज्यादा अनुभव है, ऊंचा अनुभव है.
we look to people who have somewhat greater experience of meditation than us to help us to get more deeply into it.
तो हम ऐसे लोगों की तरफ देखते हैं जिनको हमारे से ज्यादा ध्यान का अनुभव है ताकि हम उनसे मदद ले सकें.
We don't particularly like the connotation of the notion of guru.
तो गुरु ऐसी कोई जो संकल्पना है वो हमें पसंद नहीं.
So often in Indian religion it has the connotation of the guru is all perfect.
तो बहुत भारतीय संदर्भ में ऐसा देखा जाता है कि गुरु जो है वो कुछ ऊंचा होता है.
But yes, we don't look at our kalyana mitras in that way.
लेकिन हम अपने कल्याण मित्र की ओर इस तरीके से नहीं देखते.
You could say that only the Buddha is perfect.
तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बुद्ध जो है वही परिपूर्ण है.
And we try to have a very human relationship even with those who we're learning from.
और इसीलिए हम बहुत ही मानवीय ऐसे संबंध प्रस्थापित करते हैं कि जिनसे हम सीख रहे हैं उनसे भी.
We try to have friendship.
हम मैत्री प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं.
In friendship that communication takes place.
और मैत्री में संवाद होता है.
So this notion of kalyanamitrata is very very important for us.
तो कल्याण मित्रता की ये जो संकल्पनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं.
The Buddha is our ultimate kalyanamitra.
और हमारे अंतिम कल्याण मित्र जो है वो बुद्ध हैं.
And we'll be seeing a bit later how we can form an imaginative connection with the Buddha.
और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि बुद्ध के साथ एक काल्पनिक संबंध हम कैसे स्थापित कर सकते हैं.
Of course, many people, many Buddhists in India look to Dr. Babasaheb Ambedkar as their Kalyana Mitra.
और भारत में बहुत सारे लोग जो है अपने कल्याण मित्र के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं.
Inspired by his life and deeply grateful for what he's done.
और उनके जीवन से वो प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने जो किया है उसके लिए वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं.
It is he who revived Buddhism in India.
क्योंकि उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया था.
Of course he did so much else.
और उन्होंने कई ऐसे चीजें की.
In our Triratna Buddhist order, we look to Urgyen Sangharakshita as our Kalyana Mitra.
और Triratna Bodh Sangh में हम Urgyen Sangharakshita को अपने कल्याण मित्र के स्थान पर देखते
हैं. He's a friend.
वो मित्र हैं.
He's a human being.
वो एक मनुष्य हैं.
We don't think of him as being all perfect.
और हम उनके बारे में ऐसा नहीं सोचते कि वो एकदम परिपूर्ण हैं.
He doesn't sit on a high seat and expect you to obey.
और वो कोई ऐसे ऊंचे आसन पे नहीं बैठते और वो ऐसा नहीं सोचते कि आपने उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए.
He sits in a comfortable armchair and he has a chat with you.
तो वो अच्छे से कुर्सी पे बैठते और आपके साथ वो संवाद करते हैं.
And he has a cup of tea with you.
और आपके साथ वो चाय भी पीते हैं.
So Kalyanamitrata runs all the way through our movement, or at least it should do.
और पूरे हमारा जो संघ है उसमें इस तरह की कल्याण मित्रता है.
I'm afraid we're not perfect, so it doesn't always run.
तो हम कोई हमेशा परिपूर्ण नहीं होते इसलिए हमेशा ही सही होगी वो नहीं कह सकते.
But if you want to achieve excellence, you need friends who share your aspiration.
लेकिन अब अगर आप उत्कृष्टता पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे मित्र भी होने चाहिए कि जिनका वही सपना है जो आपका है.
Friends who will reinforce your efforts.
और ऐसे मित्र जो आपके प्रयत्नों को और ज्यादा ताकत लगाएंगे.
Friends who may themselves have a greater experience of the kalyana than you do.
और ऐसे मित्र जिनको कल्याण का आपसे ज्यादा अनुभव है.
You don't worry about that, you don't think about that.
आप उनके बारे में चिंता नहीं करते हो, सोचते नहीं हो.
Is he higher, is he lower, is he equal?
तो ये वो ऊंचा है, नीचा है, बराबरी का है.
Just communicate.
सिर्फ संवाद होता है.
And if somebody's got more to offer than the other, that will come up.
और अगर किसी के पास देने के लिए आपसे कुछ ज्यादा है तो वो अपने आप आएगा.
So it's very, very important, the development of Sangha.
तो संघ के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है.
It's a living spirit.
तो ये एक जीने की एक ऊर्जा है.
And I hope that's already emerging here.
और मुझे लगता है कि यहाँ पहले से हम वो देख रहे हैं.
That's what I see happening, that there's a definite sense of comradeship emerging.
और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि एक सहकारित्व या मैत्री जो है वो विकसित हो रही है.
So then yes, and the other indirect methods are important too.
और दूसरे अप्रत्यक्ष जो तरीके हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं.
One needs to try to build one's life so that there are as many factors which reinforce the kalyana as possible.
तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे तरीके होने चाहिए कि जो आपकी उत्कृष्टता को उठाने के लिए और जोर लगाते हैं.
But what about the direct technique?
लेकिन फिर प्रत्यक्ष तरीकों का क्या?
Which is primarily meditation.
तो वो है ध्यान.
I'm going to talk a little bit about that now.
तो उसके बारे में मैं अब थोड़ी सी बात करूंगा.
You've had some experience already.
तो ध्यान का कुछ अनुभव आपने अभी लिया है.
Many of you have had a lot of experience in the past.
और आप में से कुछ लोगों ने भूतकाल में भी बहुत अनुभव लिया है.
But in meditation we've learnt mindfulness of breathing, anapanasati and maitri vikas.
तो ध्यान में जो है हमने anapanasati जो सांस की जागृति है और मैत्री विकास सीखा.
And you've done just sitting.
और आपने सिर्फ बैठने का ध्यान किया है.
Just sitting and letting that space open up.
और सिर्फ बैठना और अपने अंदर की एक जगह है उसे खुला करना.
So you've already had some experience of what that's like.
तो आपको थोड़ा सा कुछ अनुभव है कि ये किस तरीके का होता है.
So what are we doing?
तो हम
What's happening?
क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है?
Well obviously you know the primary objective of those.
तो आपको इसका एक मूल उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानकारी है?
In anapanasati it's to become integrated on the basis of the breath.
तो आनापान सती में अपने श्वास को आधार लेकर एकाग्रता हासिल करना.
In maitri vikas it's to develop maitri for all beings.
और मैत्री विकास में सब सजीवों के प्रति मैत्री विकसित करना है.
But what's happening when you practice those?
लेकिन जब आप ये ध्यान कर रहे होते हो तो क्या होता है?
Well in Buddhist tradition it said what happens is that you begin to escape from or go through or get rid of the hindrances.
तो बौद्ध संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि आपको कुछ रुकावटें आती हैं तो उसके साथ या उसको दूर करने की आप कोशिश करते हैं.
I've written them up on the board here.
तो बोर्ड पे मैंने वो लिखा है.
So you begin to, when you start to meditate, you encounter certain hindrances to meditation.
तो जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करते हुए आपके सामने कुछ रुकावटें आती हैं.
Things happen in your mind that stop you from getting into the skillful mental state of meditation.
तो आपके मन में ऐसी कुछ चीजें निर्माण होती हैं जो आपको कुशल मनोस्थाओं में जाने से रोकती हैं.
And it's important to recognize these patterns of mind.
तो मन की ये जो रचनाएं हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है.
And then you can more effectively work with them.
और फिर आप बहुत प्रभावी तरीके से उनके साथ कार्य कर सकते
हैं. Actually, the most important thing is identifying them.
तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको उनको पहचानना होता है.
When you know what's happening in your mind, it's more likely to stop.
तो जब आप जानते हो कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, तब आप उसको रोक सकते हो.
So, this is the list.
तो ये एक सूची है.
Raga, which means craving.
तो राग होता है जिसका अर्थ है तृष्णा.
Or greed.
या तृष्णा.
Trishna or Tritshna.
पहला है आसक्ति, दूसरा है तृष्णा.
And the second is द्वेष.
और फिर है द्वेष.
Well, you know what that means.
तो आपको मालूम है इसका क्या अर्थ होता है.
The third is स्थान मिद्धा.
और तीसरा है स्थान मिद्धा.
In Pali, थीन मिद्धा.
और पाली में थीन मिद्धा.
That means स्थान means sleepiness.
और स्थान का मतलब होता है नींद आना.
मिद्धा means something like even depression, you could say.
और मिद्धा मतलब एक निराशाजनक स्थिति.
Then fourthly, audacha kokrucha.
और फिर चौथा है उद्दच्छ कुकुच.
उद्दच्छ कुकुच in Pali.
और पाली में उद्दच्छ कुकुच.
Audacya is restlessness, excitability of mind.
तो औदत्य मतलब अस्थिरता, मन की एक तरह से अस्थिरता.
A boiling mind, huh?
और मन जैसे आपका उबल रहा है.
And kukrutya means a sense of something wrong.
और कुकुच्छ मतलब ऐसा कि कुछ तो गलत हो रहा है.
It's even guilt.
और एक तरह की शर्मिंदगी.
Sometimes it's translated as anxiety, but it's something a bit more than that.
कभी कभी गुस्सा ऐसा भी उसका अनुवाद किया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा है चिंता.
And then finally there's vichikitsa.
और फिर बाद में है विचिकित्सा.
Vichikitta in Pali, which means doubt.
और पाली में विचिकित्सा का अर्थ होता है शंका.
So already you probably recognize some of these.
तो आप में से कुछ को आपने, इनमें से कुछ को आपने पहचाना होगा.
But let's go into them a bit more.
लेकिन इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं.
I'm sorry to deal with these unpleasant topics.
तो इन सब चीजों के बारे में बोलना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ.
But they have to be dealt with, then you can deal with them.
लेकिन इनके साथ हमें कार्य करना पड़ेगा और आप कर सकते हो.
So well, we talked quite a bit in the questions and answers yesterday about the first two, raga and dvesha.
तो कल के प्रश्न उत्तर के सत्र में पहले जो दो है, राग और द्वेष, इसके बारे में हमने बात की थी.
राग तृष्णा इज लुकिंग फॉर समथिंग टू एंगेज विथ दैट विल यू थिंक गिव यू प्लेजर.
तो राग या तृष्णा, इसके बारे में हमने देखा था कि आप अपने आप को ऐसी चीजों में उलझाए रखते हो जो लगता है कि आपको एक तरह से सुरक्षितता देगी.
इट्स समथिंग यू थिंक दैट विल गिव यू सम सेंस ऑफ कंप्लीटनेस.
और ऐसी चीजें जो लगता है आपको कि एक तरह से आपको पूर्णत्व का एहसास देगी.
And you can often see this in meditation. Your mind is reaching for something to grasp onto.
और ध्यान में आपने देखा होगा कि हमेशा आपका मन जो है किसी चीज को पकड़ने के लिए दौड़ता है.
You're looking forward to some event.
कि कुछ अभी है, कार्यक्रम होने वाला है.
You're wanting something.
आपको कुछ चाहिए होता है.
And it can be quite a pleasant state.
और कभी कभी ये आनंददायक ऐसी भी स्थिति हो सकती है.
This is the odd thing about Trishna.
और तृष्णा के बारे में ये एक थोड़ी सी अलग चीज है.
It seems as if it's pleasurable.
तो ऐसा सिर्फ नजर आता है कि ये सुखद है.
You can be sitting there thinking about your new 35-inch flat screen TV.
तो आप बैठे हो सकते हो और अपने नए 35 इंच के फ्लैट स्क्रीन वाले टीवी के बारे में सोच सकते हो.
Maybe 35 inches is too small, I don't know.
तो शायद 35 इंच बहुत छोटा होगा, मुझे पता नहीं.
But you're sitting there and you're thinking about that.
लेकिन आप बैठे और आपके उसके बारे में सोच रहे हो.
And of course, while you're thinking about it, you're thinking about the pleasure that's connected with it.
Huh? और जब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो उस टीवी से जुड़ा हुआ जो आनंद है, उस आनंद के बारे में आप सोच
you
रहे हो.
The Kumbles next door, they've only got a 32 inch one.
तो क्योंकि आपको मालूम है कि बाजू में जो कामले रहते हैं उसके पास सिर्फ 30 इंच वाला टीवी है.
Well, you feel very good because you've got a bigger one.
और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि आपके पास बड़ा वाला है.
This is the way a consumer society works. It works on envy.
तो ये जो भौतिकता की जो दुनिया है ऐसा ही ये कार्य करती रहती है.
There's a whole industry which plays on your envy.
एक पूरा ऐसा उद्योग है जो आपके जलन या ईर्ष्या के ऊपर कार्य करते रहता है.
There's an industry that is trying to get you to experience Krishna.
और ये एक ऐसा उद्योग समूह है जो कोशिश करता रहता है कि आप तृष्णा का अनुभव लो.
They want you to crave because then you'll buy.
वो चाहते हैं आपके अंदर तृष्णा जागृत हो क्योंकि तभी आप वो चीजें खरीदोगे.
And they use your envy.
और वो जो आपकी जलन ईर्ष्या का इस्तेमाल करते हैं.
This is quite straightforwardly the case. If you read books on the marketing industry, they're deliberately targeting a comparison.
तो अगर आप जो मार्केटिंग वाला चीजों का अध्ययन करते हो तो आप देखोगे कि वो जो है तुलनात्मक जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं.
So, but the thing is that when you're thinking of the object, for instance, that you crave, you're associating that with pleasure.
तो जब जिस चीज की आपके अंदर तृष्णा होती है उसके बारे में आप सोचते हो तो उससे जुड़े हुए आनंद के बारे में आप सोचते हो.
But if you look back at yourself now, you feel empty.
लेकिन फिर उस वक्त अगर आप खुद की तरफ देखते हो तो अंदर से आप रिक्त होते हो.
You're thinking about pleasure in the future, but right now there's some sense of dissatisfaction.
तो भविष्य वाले आनंद के बारे में आप सोच रहे हो लेकिन इस वक्त जो है असंतोष है.
That's what Krishna is about.
और यही तृष्णा से जुड़ा हुआ है.
It's about anticipated pleasure.
तो एक सोची गई या कल्पना की गई ऐसा वो आनंद है.
And that anticipated pleasure compensates for a feeling of dissatisfaction now.
और फिर ये जो काल्पनिक आनंद है अभी के असंतोष के साथ मतलब लगता है आपको कि क्या करता है कॉम्पेंसेट
मेक्स अप फॉर.
हाँ तो अभी के असंतोष को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको दिलासा देता है.
What they say, you can't have jam today, so you think of jam tomorrow.
तो क्योंकि आप आज जैम नहीं खा सकते इसलिए आप कल के जैम के बारे में सोचते
हो. Actually, you want it now.
लेकिन वो आपको अभी चाहिए होता है.
You don't feel good now, so you're looking for something to satisfy yourself in the future.
क्योंकि आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो इसलिए आप भविष्य में ऐसी चीजों की तरफ देखते हो जो आपको अच्छा महसूस कराए.
Of course, when you get your 35-inch TV, you find that the Joshis, the other side, have got a 50-inch TV.
और फिर जब आप अपना 45 इंच वाला टीवी लेकर आते हो आपको पता चलता है कि पड़ोस के जोशी ने 50 इंच वाला ला लिया.
And then you just start craving all over again.
और फिर आपकी जो है तृष्णा वापस शुरू हो जाती है.
So craving is essentially a state of dissatisfaction which is connected with future satisfaction.
तो तृष्णा जो है एक असंतोष की ऐसी भावना जो है भावना है जो भविष्य के संतोष के साथ जुड़ी हुई.
You think that when you got that, आराम से.
तो आप सोचते हो कि जब आपको वो मिल जाएगा तब आप आराम आएगा.
But it's not true.
लेकिन ये सच नहीं है.
Because the future never arrives.
क्योंकि भविष्य कभी नहीं आता.
The future is simply the past is the present or the future. No, that's not that. Whatever. You never get to the future.
आप भविष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते.
When you get to the future, there's another future with a more satisfaction ahead of you.
क्योंकि उस भविष्य तक आप जब पहुंचते हो तो और एक भविष्य वहां पर होता है.
And that's the way the world works.
और इसी तरह से दुनिया कार्य करती है.
So we need to try to notice this pattern in our meditation.
तो इस प्रकार की ये जो रचनाएं हैं उसको हमने हमारे ध्यान में देखना चाहिए.
You're just sitting,
आप सिर्फ बैठे हो.
Just with the breath,
सिर्फ अपनी सांस के साथ हो.
No big television, no car, no house, nothing.
कोई बड़ा टीवी नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है.
Just your breath,
सिर्फ आपकी सांस है.
And a dissatisfaction arises.
और एक असंतोष उभर कर आता है.
And you try to fill that with imagining something in the future.
और उस असंतोष को भरने के लिए भविष्य में आप कुछ तो भी कल्पना करते हो.
Or sometimes dwelling on past pleasures.
या भूत भूतकाल में जो आपको सुख मिला था उसके उसमें आप उलझ जाते हो.
But that doesn't give you real satisfaction now.
लेकिन फिर वर्तमान में आपको सही संतोष नहीं मिल पाता.
So one needs to recognize what's going on.
तो हमें पहचानना चाहिए कि क्या चल रहा है.
And especially you need to recognize that right now the experience of the breath, the experience of Maitri is pleasurable.
और फिर आपने ऐसा देखना चाहिए कि अभी इस वक्त मेरा जो सांस का अनुभव है या मैत्री का जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उसमें मुझे सुख आ रहा है.
I'm sure that some people with some medical condition or whatever, breathing may be painful.
तो अगर आपको कुछ बीमारी है या ऐसी कुछ स्थिति में सांस लेना आपके लिए शायद तकलीफदेह हो सकता है.
For most people, if you pay attention to the breath, the sensations even are pleasurable.
लेकिन बहुत लोगों के लिए वो अगर अपनी सांस की तरफ ध्यान भी देते हैं तो जो संवेदनाएं निर्माण होती है उससे भी बहुत आनंद आता
In
है
fact, they can be intensely pleasurable.
और बहुत ही गहरा उसमें आनंद आ सकता
But they're more aesthetically pleasurable than merely sensually pleasurable.
तो सिर्फ इंद्रियों के स्तर पर ही सुख देने के से भी ज्यादा उसमें एक अजीब सुंदरता होती है.
More like looking at a beautiful painting or a beautiful sunset.
तो बहुत ही सुंदर सूर्यास्त के तरफ या पेंटिंग के तरफ कला के तरफ देखने जैसा ये होता है.
So instead of thinking of pleasures in the future, try to connect with the pleasurable experience in the present.
तो भविष्य में किसी सुखद कल्पना के साथ जुड़ने के बजाय अभी वर्तमान में जो सुखद चल रहा है उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए.
Recognize what's happening.
क्या हो रहा है उसे पहचानिए.
Recognize the falseness of the situation.
तो जो भी स्थिति का जो झूठापन है उसको भी पहचानिए.
It's not a satisfactory way of satisfactory strategy for making yourself happy.
तो अपने आप को संतोष देने के लिए ये कोई समाधानकारक ऐसा तरीका नहीं है.
The extreme is addiction.
और इसका बहुत दूसरा छोर मतलब आप उसके अधीन हो जाते हैं.
I had friends who got involved with heroin.
तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हेरोइन के व्यसन के अधीन हैं.
I never took heroin, but I believe it's intensely pleasurable when you inject the drug.
तो मैंने कभी हेरोइन नहीं लिया है लेकिन मेरी ऐसी कल्पना है कि जब वो हेरोइन का आप लेते हो इंजेक्शन तो बहुत सुखद महसूस होता है.
So you get intense pleasure from taking it.
तो बहुत ही बढ़िया ऐसा सुख आपको महसूस होता है.
Then it goes.
लेकिन फिर वो चला जाता है.
So then you have to have more.
और फिर आपको और ज्यादा मात्रा में वो चाहिए.
And then you have to have more.
और फिर उससे अधिक मात्रा में चाहिए.
And eventually you can kill yourself from that.
और इस तरीके से आप शायद खुद को मार भी सकते हो.
So there's at least one friend who died from heroin overdose.
तो मेरा एक ऐसा मित्र है जो हेरोइन के अधिक मात्रा के सेवन के कारण मृत्यु हो गई.
Well, there are other forms of addiction.
लेकिन दूसरे भी तरीके की अधीनताएं हो सकती हैं.
Not just to substances like alcohol or tobacco.
तो जैसे शराब या तंबाकू इसके ही अधीन होना नहीं.
I think that you could say there's addiction to consumer goods.
लेकिन ये जो भौतिक वस्तु है इनके भी हम अधीन होते हैं.
I live in a society of addicts.
तो ये अधीनता का जो एक एक समाज है उसके मध्य में मैं रहता हूँ.
The whole of Western Europe at least, and maybe the whole of Europe, whole of America, they're consumer addicts.
तो लगभग जैसे पूरा पाश्चिमात्य देश या यूरोप या अमेरिका है वो एक तरीके से अधीनता का शिकार है.
And India is catching up with this new religion very, very fast.
और इस नए धर्म जो है भारत में भी लोग उसके अधीन हो रहे हैं.
Indians are becoming the greatest consumerists in the world.
तो भारतीय जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इन भौतिक वस्तुओं के अधीन हो रहे हैं.
But it's just raga.
लेकिन ये सिर्फ राग है.
Nothing wrong with having decent things, huh?
तो अच्छी चीजें होना ये कोई गलत बात नहीं है.
But if it's driven by unsatisfaction, dissatisfaction, then it's just going to be painful to you and not good for the world.
लेकिन सिर्फ असंतोष के कारण अगर आप उनके पीछे लग रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है.
So what about द्वेष?
तो फिर द्वेष के बारे में क्या?
It's very much the same, but in reverse.
तो ये ऐसा ही है लेकिन इसकी दिशा सिर्फ उल्टी है.
You believe that you can be happy if something is got rid of.
तो आपका ऐसा मानना होता है कि अगर आप किसी चीज से पीछा छुड़ा लोगे तो आप सुखी हो जाओगे.
If he or she goes, I will be happy.
तो अगर ये व्यक्ति या वो व्यक्ति चला जाता है तो मैं खुश हो जाऊंगा.
So you sit in meditation thinking about how to get rid of them.
और फिर आप ध्यान करने लगते हो और सोचते हो कि इनसे मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं.
Of course it can be not just individual, it can be whole classes, whole societies, huh?
तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, तो पूरे वर्ग या पूरे समाज के बारे में भी हो सकता है.
I found it very interesting going to Hungary. Well, horrifying going to Hungary.
तो हंगरी जाना मेरे लिए बहुत रोचक या डरावना भी ऐसा अनुभव है.
I've gone because I've been connecting with gypsy people.
तो मैं वहां गया था क्योंकि जिप्सी लोगों के साथ मेरा संपर्क था.
And of course the other Hungarians, the white Hungarians, hate them.
और वहां के जो सफेद हंगेरी लोग हैं वो उनसे नफरत करते हैं.
Not everybody by any means, but quite a lot.
अभी सभी लोग नफरत नहीं करते लेकिन बहुत लोग करते हैं.
And you know, I've encountered that very directly.
और बहुत ही सीधे मैंने भी इसका अनुभव लिया है.
They see the gypsies as a threat.
तो उन्हें लगता है कि ये जिप्सी लोग जो है एक प्रकार से डर है उनके लिए.
Hungary would be better without them.
और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो हंगरी बहुत अच्छा हो जाएगा.
So hatred can take that form.
तो नफरत जो है ये स्वरूप भी ले सकती है.
A lot of politics uses that psychology.
और बहुत सारी राजनीति भी जो है इस प्रकार के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करती है.
A lot of politics plays with raga and dvesh.
तो बहुत सारी राजनीति जो है राग और द्वेष को इस्तेमाल करती है.
A lot of politics looks at who the bad people are.
और बहुत सारी राजनीति ऐसे ही देखती कि कौन बुरे लोग हैं.
I don't know whether it happens. Yes, I'm sure it does happen in India, but in Britain, and I notice this with the presidential race in America, everybody always says, why don't they talk about what's good?
तो भारत में मुझे क्या क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ब्रिटेन के बारे में मुझे मालूम है. तो ये जो हमारे राष्ट्रपति के राज में तो बहुत सारे लोग जो इस बारे में बात करते हैं कि वो बुरा के बारे में हमेशा बात क्यों करते, क्या अच्छा है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते.
They have to use dvesh to get votes.
तो उनको वोट पाने के लिए वो द्वेष का इस्तेमाल करते हैं.
So yes, it's a very strong tendency in the mind.
तो मन में एक बहुत ही प्रभावी ऐसी चीजें.
We identify our happiness with the elimination of certain people, especially.
तो कुछ लोगों को अलग करने से हम अपने सुख को जोड़कर देखते हैं.
And you can watch yourself in your own mind.
और आप अपने मन के अंदर भी आप खुद देख सकते हो.
You think, well, he, look what he did.
तो आप देखते हो कि ये इसने क्या किया है.
And then you start to dwell on how bad he is.
और फिर आप सोचना शुरू करते हो कि ये कितना बुरा है.
And then you start to think about how they should be moved away.
और फिर आप सोचना शुरू करते हो कि इनको यहाँ से दूर कैसे निकाला जाए.
And again, the problem is in you.
लेकिन अंत में ये जो समस्या है ये आपके भीतर है.
Yes, there may be something they're doing that's not good.
तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें वो कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है.
But you'll be able to help them much more if you have Maitri.
लेकिन आप उनकी मदद ज्यादा कर सकते हो अगर आपके अंदर मैत्री हो.
So you need to look at this internal sense of dissatisfaction.
तो अपने अंदर का जो ये असंतोष की भावना है इसको आपने देखना चाहिए.
My own experience in looking into my own hatred is that at the bottom of it there's usually a sense of weakness.
तो मेरे खुद के अनुभव में मैं जब खुद के असंतोष की ओर देखता हूँ वहाँ पे मुझे दिखता है कि वहाँ पे एक प्रकार का
I feel weak, I feel insecure.
एक प्रकार की कमजोरी है, मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ.
That person threatens me.
उस व्यक्ति से मुझे डर लगता है.
So I want them out.
इसलिए मैं उसको दूर करना चाहता हूँ.
Of course, when they're out, somebody else comes and fills that place.
और जब वो वहां से दूर हो जाते हैं तो दूसरा कोई आता है और उनकी जगह ले लेता है.
They're queuing up to fill that place.
तो एक प्रकार से जैसे उनकी ये लगी है, रांग लगी है.
Very interesting. There's always one person.
तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हमेशा एक ही व्यक्ति होता है.
But when that one person goes, another one comes.
लेकिन वो जब एक चला जाता है तो लाइन का दूसरा आ जाता है.
I hope I'm not just revealing my own psychology.
तो मुझे लगता है कि मैं शायद अपना मनोविज्ञान ज्यादा उजागर नहीं कर रहा हूँ.
But I suspect this is a common trait.
तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है.
And the real issue is not being able to be just contented now.
और सही समस्या ये है कि अभी इस वक्त में मैं संतोष को नहीं महसूस कर पा रहा
हूं. So you need to look at the pattern.
तो ये जो रचना है इसकी तरफ हमें देखना होना चाहिए.
And often it's just simply a question of living a healthier, happier life in general.
और सामान्य एक ही प्रश्न होता है कि मैं ज्यादा अच्छा सामान्य स्वस्थ जीवन कैसे जीऊं.
In the traditional account of antidotes to all of these, exercise is very commonly stressed.
तो परंपरागत तौर पे जो इन रुकावटों को दूर करने के तरीके बताए जाते हैं उसमें व्यायाम ये बहुत एक अच्छा तरीका बताया जाता
है. Being in the light, being in the air.
कि अच्छे प्रकाश में हवा में होना बताया
जाता है. Just being in a better sort of environment.
अच्छे वातावरण में होना बताया जाता
है. That can really help you to overcome both raag and dvesh.
और राग और द्वेष से दूर जाने के लिए ये एक मददगार साबित हो सकता है.
Then sthana and middha.
उसके बाद है स्थाना मिद्धा.
स्थाना is yes, sleepiness.
स्थाना मतलब नींद आना, आलस.
Well, obviously there's a very good reason for being sleepy.
नींद आने के बहुत अच्छे कारण हो सकते हैं.
You haven't had enough sleep.
आपकी शायद नींद अच्छी नहीं हुई होगी.
And it's important to make sure that you do get enough sleep.
और ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात की तसल्ली कीजिए कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है.
It's very difficult to meditate if you're tired.
अगर आप थके हुए हो तो ध्यान करना बेहद मुश्किल हो सकता है.
So you may be simply objectively lacking in sleep.
तो इतना ही वजह हो सकती है कि शायद आपकी नींद कम पड़ रही है.
So have a sleep.
तो इसलिए नींद लीजिए.
Sometimes if I sit to meditate and I get sleepy, I just lie down for 5 minutes.
तो कभी कभी ऐसा होता है मैं ध्यान कर रहा हूँ और मुझे आलस महसूस हो रहा है तो मैं लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ.
And just a 5 minute nap and I've got the energy to meditate.
और सिर्फ ये 5 मिनट की नींद से मुझे ध्यान करने के लिए वापस ऊर्जा मिलती है.
So Jivak, if you find people snoring in your meditation practice later, you can blame me.
तो जीवक को अगर ध्यान में मतलब लोग खराटे भर रहे ऐसे दिखे तो जीवक सुबुद्धि को दोष दे सकते हैं.
I'll give you a little piece of personal experience.
तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव का थोड़ा हिस्सा आपको बताऊंगा.
Please don't tell anybody I told you.
और कृपया किसी को मत बताइए कि मैंने आपको बताया.
But sometimes if I'm sleepy when I'm meditating, I deliberately let myself go to sleep.
लेकिन कभी कभी मैं ध्यान कर रहा हूँ अगर मुझे नींद आती है तो मैं अपने आप को सोने देता हूँ.
You just let yourself go to sleep and you can gently sleep sitting bolt upright. Everybody thinks such a good meditator.
तो मुझे नींद आ रही है तो मैं अपने आप को सोना देता हूँ, सोने देता हूँ, सिर्फ सीधे बैठा रहता हूँ और सबको लगता है बहुत अच्छा ध्यान कर रहा
है. You go right down to the bottom of the ocean, then you come straight up again.
तो आप जो है समुद्र के एकदम तल तक पहुँचते हो और वापस फिर आप ऊपर आ जाते हो.
You're wide awake.
और फिर आप एकदम जागे हुए होते हो.
Don't blame me if you fall over.
लेकिन अगर आप गिर जाते हो तो मुझे दोष मत दीजिए.
Yeah, but if you're lacking in sleep, well, you need to sleep.
लेकिन अगर आपकी नींद कम हुई है तो आपने सोना चाहिए.
Yes, you can take all this quite wrongly, but please don't tell anybody what I've said.
तो आप इसको गलत तरीके से भी ले सकते हो लेकिन कृपया किसी को मत बताइए.
Yes, if your body is tired, it'll be difficult to meditate.
अगर आपका शरीर थका हुआ है तो ध्यान करना मुश्किल हो सकता है.
If you've been very ill, obviously it's difficult to keep conscious.
और हाल ही में अगर आप बीमार हुए हो तो जागरूक रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है.
Sometimes very good just to walk up and down.
तो कभी कभार सिर्फ चहलकदमी करना भी बहुत अच्छा हो सकता है.
It's easier to keep awake when your body is alert.
तो जब आपका शरीर जागरूक है तो जागते रहना आपके लिए आसान होता है.
So you could say that sthana is objective sleepiness.
तो आप कह सकते हो स्थाना एक तरह का आलस है.
But middha is you could say compulsive sleepiness.
लेकिन मिद्ध जो होता है कि जबरदस्ती से आपको नींद आ रही है.
Your energy is blocked in some way, so you feel dull.
आपकी ऊर्जा एक तरह से बंदिश है और इसलिए आपको बहुत बोझल महसूस होता है.
Often this is a result of conflict of some kind.
और अगर आपके अंदर कुछ संघर्ष चल रहा है तो उसके नतीजे में भी ऐसा होता है.
Your mind is in conflict, so you feel dull.
आपके मन में एक संघर्ष चलते रहता है और इसके लिए आप बहुत बोझल महसूस करते हो.
Two sets of energies are in conflict with each other within you.
तो आपके अंदर दो ऊर्जाएं होती है और वो एक दूसरे से टकराव करती रहती
है. They sort of neutralize your energy.
और उसकी वजह से पूरी जो है वो आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है.
Well, clearly, you need to resolve that conflict.
और इसलिए इस संघर्ष का आपको अंत करना पड़ता
है. At least you need to identify that it's conflict that's at the bottom of it.
या कम से कम इस बात को पहचानना पड़ता है कि इसके तह में जो है कोई संघर्ष चल रहा है.
I've talked quite a bit about this sense of living up to your ideals.
अपने आदर्शों के अनुसार जीना, इसके बारे में मैंने बहुत बात की.
I think sometimes you can have this feeling of dullness because you're not living up to your ideals, but it's difficult to realize that.
और एक प्रकार से ये बोझलता आपके अंदर ऐसी इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि आप आदर्शों के अनुसार जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे.
So when you try to meditate, signal is down.
और फिर जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होती है.
Only one bar on your signal.
तो वो जो आपका सिग्नल रहता है उसमें सिर्फ एक ही लकड़ी होती है.
Sometimes signal disappears altogether.
तो मोबाइल वाला वो सिग्नल कभी कभी पूरा निकल जाता
है. Well, where is the energy going?
तो ये ऊर्जा कहाँ निकल कर जाती है?
If there's no energy available for the meditation, where is the energy?
तो अगर ध्यान के लिए आपके पास ऊर्जा है ही नहीं तो ऊर्जा कहाँ चली गई?
There must be energy because you're alive.
तो ऊर्जा तो होनी ही चाहिए क्योंकि आप जीवित हो.
Where is the energy?
लेकिन फिर वो ऊर्जा है कहाँ?
So you have to go back, find the energy, and then bring it into the meditation.
तो फिर वापस आपको पीछे जाना पड़ता है, उस ऊर्जा को ढूंढना पड़ता है और फिर ध्यान में उसे इस्तेमाल करना पड़ता है.
I think as you meditate more and more, you'll come across this issue.
तो जैसे आप ज्यादा ज्यादा ध्यान करने लगोगे ये सब बातें आपके सामने आएगी.
There are energies that don't really want to be involved.
तो ऐसी कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो अपने आप को उस चीज में लगाना नहीं चाहती.
You slowly have to gather them together.
और ऐसी सब ऊर्जाओं को आपको धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ता है.
Not just in the meditation, but in your whole life.
तो सिर्फ ध्यान में ही नहीं लेकिन आपके पूरे जीवन में भी.
I'm afraid I'm having to go rather quickly over these very important topics.
तो मुझे खेद है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें और मुझे बहुत जल्दी में बोलना पड़ रहा है.
औदाच्य कुकृत्य. औदाच्य इज अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड.
तो औदाच्य जो है मन की अस्वस्थता होती है.
एक्साइटेबिलिटी.
बहुत आप उत्तेजित होते हो.
I used to suffer from this terribly when I was younger.
और मैं जब युवा था तो इसका मुझे बहुत तकलीफ होती थी.
You know, 1,000 ideas a minute.
तो एक मिनट में हजार विचार आ जाते हैं.
I could do that.
कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ.
It's like a sort of bubbling, boiling.
तो ऐसे जैसे उबल रहे हैं सब चीजें.
And very, very can be very, very pleasurable in a way.
और उसमें बहुत आनंद भी आ सकता है.
It's as if your energies get run away with you.
तो ऐसे कि जैसे आपकी ऊर्जा आपके साथ दौड़ रही है.
And you can't settle them down.
और आप उनको ऐसे रोक के बिठा नहीं सकते.
And the experiences of a whirling brain.
और आपका मन जो है वो एक तरीके से चल रहा है.
Very important then to come back down to your actual experience.
और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो अपने वास्तविक अनुभव है उसके साथ उस वक्त आ सके.
Kukruccha is this sense of something being wrong.
और कुकुच्छ जो है एक एहसास कि कुछ गलत हो गया है.
कौ means wrong.
कौ means गलत.
कृत्य means done.
और कृत्य मतलब कोई कृति.
So it's something's wrong.
अगर कुछ गलत हो गया है.
It can be, oh, did I turn the gas off?
मैंने गैस जलाया तो नहीं.
Did I lock the door?
मैंने दरवाजा बंद तो किया है ना.
Did I remember to send that letter?
मैंने वो पत्र भेजना याद तो रखा है.
It can be that sense of functional, something wrong functionally.
तो कुछ तो भी मेरे हाथ से गलत हो गया है इसका एक एहसास अंदर.
It can be a sense that I shouldn't have done that.
या ऐसा भी कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए.
I shouldn't have said that. I shouldn't have done that.
मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था.
A feeling of regret, of remorse.
और पश्चाताप की अंदर भावना होती है.
Well, you need to recognize what's happening and resolve it.
तो क्या हो रहा है उसको पहचानना और उसका समाधान ढूंढना.
You need to just decide, yes, I did turn the gas off.
तो सिर्फ अपने आप को बताना कि हाँ मैंने गैस बंद कर लिया है.
Or no, I didn't. Go and turn it off.
या नहीं मैं नहीं गया और मैंने गैस नहीं बंद किया है.
Or you have to decide, yes, that was wrong. I shouldn't have said that.
या पूरे से तय कर लेना कि हाँ वो गलत था और मैंने किया नहीं बोलना चाहिए था.
And then you decide, I will go to them and say sorry.
और ये तय करना कि मैं उनके पास जाऊंगा और मैं माफी मांगूंगा.
I shouldn't have done that. I will go and put that right.
मैंने ये गलत किया है लेकिन मैं जाऊंगा और उसको ठीक करूंगा.
So you get rid of the hindrance by facing it.
और फिर इस रुकावट का सामना करके आप उससे छुटकारा पा सकते हो.
Then finally, there's vichikitsa, doubt.
और फिर अंत में विचिकित्सा या शंका कुशंका.
This is a failure to make up your mind.
और ये ऐसा होता है कि आप किसी निर्णय में पहुंचने में असमर्थ होते हो.
It's not doubt in the sense that you don't know.
तो ये ऐसी शंका नहीं है कि आपको पता नहीं है.
It's not lack of information.
ये ऐसा नहीं कि आपके पास जानकारी की कमी है.
Or not able to resolve something that is genuinely doubtful.
और ऐसे जिसमें आपको कुछ शंका है और उसका आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे.
You know, who will win the election?
कि कौन चुनाव जीतेगा.
That's genuinely doubtful.
तो इसमें आपको एक सही शंका होती है.
But it's more an emotional state of unwillingness to commit.
लेकिन ये एक प्रकार की भावनिक अवस्था होती है जिसमें आप अपने आप को किसी चीज के प्रति प्रतिज्ञाबद्धता करने से रोकते हो.
You sit down to meditate.
आप ध्यान करने के लिए बैठते हो.
Shall I do the Maitri Vikas or the Anapanasati?
कि मैं अभी मैत्री विकास करूं या अनापानसति करूं?
And after 40 minutes, you've done neither.
और 40 मिनट हो जाते हैं और आप कुछ भी नहीं करते.
And you start to do Anapanasati and you think, no. What I really need is Maitri Vikas.
आप अनापानसति करना शुरू करते हैं और फिर आपको लगता है नहीं, मैंने मैत्री विकास करना चाहिए.
And you do Maitri Vikas and you think, oh no, it's really Anapanasati I need.
फिर आप मैत्री विकास करते हो और आपको लगता है नहीं, अनापानसति करना है.
So it's a constant state of wavering and doubt.
तो ये निरंतर आप एक शंका की स्थिति में उलझे हुए रहते हो.
Some characters are very prone to this.
और कुछ कुछ लोग जो है इससे बहुत नजदीक का इनका संबंध.
Some people remain constantly suspended in doubt.
कुछ लोग जो है हमेशा इस प्रकार की दुविधा में अटके हुए होते हैं.
I remember when I was studying philosophy, there was an example given of, I think it was Burnell's ass, Burnell's donkey.
तो जब मैं फिलोसॉफी पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक उदाहरण था बुदानेल्स गधा, मतलब कोई तो है उसका गधा.
I can't remember what it was illustrating, but the image is so strong, I can remember that.
तो वो क्या कहानी में बता रहे थे मुझे याद नहीं, लेकिन वो जो प्रतीक है बहुत ही सशक्त था, मुझे याद है वो.
So this donkey likes carrots.
तो ये जो गधा है इसे गाजर बहुत पसंद थे.
And so what happens if you suspend two carrots absolutely equidistant from its mouth?
तो फिर क्या होता है कि अगर आप दो गाजर लेते हो और उसके चेहरे के एकदम समांतर इस पे वो लटका कर रखते हो.
There's one there, one there.
तो एक गाजर इधर है और एक गाजर उधर है.
The poor donkey.
और वो बेचारा गधा.
If I go that way, I'll miss that one.
तो वो कहते हैं अगर मैं इसको खाऊंगा तो वो छूट जाएगा.
If I go that way, I'll miss that one.
अगर मैं उसको खाऊंगा तो ये छूट जाएगा.
So it stands there in indecision.
और फिर वो दुविधा में वहीं खड़ा रह जाता है.
Well, that's what vichikitsa is.
और ये विचिकित्सा है.
You can't make up your mind.
आप अपने मन में कुछ तय ही नहीं कर पाते हो.
You need to just grab one carrot and eat it.
एक आप गाजर पकड़ लो उसको खा लो.
And maybe the other one will be there later.
और बाद में आपको दूसरा मिल भी सकता है.
You need to make up your mind. You need to commit yourself to some course of action.
तो कुछ कृति करने के लिए आपको अपने मन को तैयार करना होता है.
You know, some people find it very, very difficult to commit themselves.
और आपको पता होगा कि कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है.
You know, they look at the list of movies, they just can't decide which one to see.
तो वो जो है पिक्चर आते हैं वो सूची की तरफ देखते रहते हैं लेकिन तय नहीं कर पाते कि कौन सी देखना है.
So in the end, they don't see any.
और फिर आखिर में वो एक भी नहीं देखते.
So it's like that, huh?
तो ये इस तरीके से होता है.
Your mind refuses to commit.
तो आपका मन जो है प्रतिज्ञाबद्धता के लिए इनकार करता है.
Because if you commit, well, you don't do the other thing.
क्योंकि अगर आप किसी चीज के साथ प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हो तो आप दूसरी चीज नहीं कर पाते.
You may feel you'll miss something.
आपको लगता है कि आप कुछ आपसे कुछ छूट जाएगा?
You may feel you're wrong and you'll be blamed.
आपको ऐसे लगता है कि शायद आप कुछ गलती कर रहे हैं और आपको दोष दिया जाएगा?
You may fear that you will fail.
आपको लगता है कि शायद इसमें आप असफल हो जाओगे?
So it's not an intellectual doubt.
तो ये कोई बौद्धिक ऐसा संभ्रम नहीं है.
It's emotional.
ये भावनिक ऐसी दुविधा है.
Intellectual doubt is necessary.
तो बौद्धिक जो संभ्रम या शंका है वो जरूरी है.
In Buddhism we encourage thought.
तो बौद्ध धर्म में विचार करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं.
We encourage questioning.
प्रश्न पूछने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं.
You could say that our fundamental technique is questioning the nature of reality.
तो आप ये कह सकते हो कि हमारी मूल तकनीक जो है वास्तविकता को निरंतर प्रश्न पूछते रहना.
And I'll talk to you more about that later.
और इसके बारे में आपसे मैं बाद में और बात करूंगा.
In a way, our main method is to say, what is this reality?
तो हमारी मूल तकनीक ये होती है कि ये पूछना कि ये वास्तविकता मतलब क्या है.
And to doubt what convention tells us it is.
और परंपरागत तौर पे जो भी आपको उसके बारे में बताया जाता है उसके ऊपर शंका उपस्थित
करना. So the doubt here is not genuine intellectual inquiry.
लेकिन यहाँ पे ये जो शंका है वो आपकी सही प्रामाणिक जो है बौद्धिक चिकित्सा नहीं है.
It's a refusal to commit.
ये जो है प्रतिज्ञताबद्ध से इनकार करना है.
If you don't commit, you won't get anything.
अगर आप किसी चीज को प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता.
So when we're meditating, we're trying to get rid of these five hindrances.
तो जब हम ध्यान करते हैं तो इन पांच रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हैं.
We're using the breath to get rid of them.
और इनको दूर करने के लिए हम अपनी सांस का इस्तेमाल करते हैं.
We're using Maitri to get rid of them.
इनसे दूर जाने के लिए हमारी मैत्री का इस्तेमाल करते हैं.
And what we experience when we get free from the hindrances is a state of great peace, of great happiness.
और जब ये सब दूर निकल जाते हैं तो जो हम अनुभव करते हैं वो एक बहुत ही शांत और सुखद ऐसी अवस्था होती है.
A great stillness of mind.
मन की एक शांति होती है.
A great clarity.
अधिक स्पष्टता होती है.
Even if you're thinking, the thinking is very clear, very sharp.
अगर आप सोच भी रहे हो तो आपकी सोच जो है बहुत स्पष्ट होती है.
A very great integration, the mind is concentrated.
और आपका मन जो है पूरी तरह से एकात्मता उसमें होती है, अखंडता होती है.
This is what we experience when we become free of the hindrances.
और जब इन सब रुकावटों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा हम अनुभव करते हैं.
And it's quite easily attainable.
और ऐसा आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं.
It's what we call jhana.
और इसी को हम ज्ञाना कहते हैं.
Jhana.
Jhana.
I know that in Hindi, jhan means concentration in an ordinary sense.
तो हिंदी में ज्ञान मतलब सामान्य तौर से एकाग्र होना.
But in Buddhist tradition, jhana or jhana means this state of freedom from the hindrances.
लेकिन बौद्ध संदर्भ में ध्यान या ध्याना जो
जाना,
है ध्यान इन रुकावटों से मुक्ति पाना है.
So that's what we're aiming at.
और यही हमारा ध्येय है.
There's a lot more to say about that.
इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है.
But time has run out.
लेकिन वक्त खत्म हो गया है.
We'll have to come on to this topic and some other topics connected with Dhamma Niyama later.
तो इस विषय पे और धम्म नियम से जुड़े हुए अन्य कुछ विषयों पे हम बाद में बात करेंगे.
But I believe you're going to have some discussion now.
लेकिन अभी आपका चर्चा सत्र है.
Please doubt as much as you like.
तो जितना आपको शंका उपस्थित करनी है उतनी कीजिए.
Personally, I like a really good doubt.
और सही में जो अच्छी शंकाएं हैं वो मुझे बहुत पसंद है.
Then, well, if you ask me a question based on that, it stretches me.
तो अगर फिर उसके ऊपर आधारित मुझे आप प्रश्न पूछते हो तो मैं भी थोड़ा
स्ट्रेच
महसूस करता हूँ.
I may be forced to say मुझे मालूम नहीं.
तो शायद ऐसा भी होगा कि मुझे कहना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं.
See how many मुझे मालूम नहीं you can get out of me today.
तो देखते हैं कि आप कितने बार मुझसे ये कहलाओगे कि मुझे मालूम नहीं.
But don't doubt emotionally.
लेकिन भावनिक स्तर के जो है वो शंकाएं मत उपस्थित.
Really commit yourself to this process of excellence.
तो उत्कृष्टता की ये जो प्रक्रिया है इसके साथ आप सच में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए.
Thank you.
धन्यवाद
थैंक यू
धन्यवाद मर्सी